आज है 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। हेती में आए शक्तिशाली तूफान मैथ्यू ने भारी तबाही मचाई, 108 लोगों की मौत। किसान यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा सैनिकों के खून की दलाली करने वाला।
मुझे लगता नहीं है कि इसका फायदा कोई कांग्रेस को खास होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पंजाब में भी ये सब लड़ाई वगैरह का असर काफी होता है, झगड़ों का या पाकिस्तान के साथ विवाद को लेकर के जो वोटर का दिमाग है जल्दी घूमता है।
BCCI के लिए क्यों है करो या मरो की स्थिति, और अमेरिका में पाकिस्तान के विशेष दूतों ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, ये सब थोड़ी देर में। पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार हरिता कांडपाल से। कैरेबियाई देश हैती में शक्तिशाली तूफान मैथ्यू ने भारी नुकसान पहुंचाया है और 108 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कई शहरों में भारी तबाही भी हुई है। हैती के अलावा क्यूबा और फिर बहामास में भी तूफान ने अपना असर दिखाया है। अब इस तूफान के अमरीका के फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों में टकराने की आशंका बनी हुई है। इसके साथ अमेरिका के 4 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। पाकिस्तान की संसद ने ऑनर किलिंग से जुड़े कानून को पास कर कथित ऑनर किलिंग के मामलों में दोषियों के छूटने का रास्ता बंद कर दिया है। नए कानून के लागू होने से ऑनर किलिंग में शामिल लोगों को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। इससे पहले ऑनर किलिंग के दोषियों को पीड़ित परिवार के लोगों से माफी मिल जाती थी, जिससे वो सजा से बच जाते थे, लेकिन इस नए कानून के मुताबिक पीड़ित परिवार से मिली माफी के बाद भी दोषी सिर्फ फांसी की सजा से ही बच पाएंगे। पाकिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग के मुताबिक पिछले एक साल में ऑनर किलिंग के 1,100 महिलाओं की हत्याओं के मामले सामने आए थे। वेनेजुएला में विपक्ष के नेता हेनरिक कैप्राल्स ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि वो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के लिए मजबूर कर देंगे। हेनरिक कैप्राल्स ने BBC से कहा कि वेनेजुएला गरीबी से जकड़ा हुआ है और देश के 80% लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो 40 लाख लोगों के दस्तखत लेकर जनमत संग्रह के लिए राष्ट्रपति को मजबूर करेंगे। तेल निर्यात पर वेनेजुएला पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन तेल के कच्चे तेल के गिरते दाम से वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। हेनरी कैप्राइल्स ने ये कहा।
वेनेजुएला हैज टू चेंज, वी आर हैविंग द वर्स्ट सिचुएशन।
वेनेजुएला को बदलना होगा, हमारे इतिहास के ये सबसे बुरा दौर है। वेनेजुएला के 80% लोग गरीबी में जी रहे हैं। 3 साल पहले ये एकदम अलग देश हुआ करता था। हम जनमतसंग्रह कराएंगे, इसके लिए 40 लाख लोगों के दस्तखत लेने होंगे, लोग वोट डालेंगे और नई सरकार बनाएंगे। ये मुश्किल लगता है, लेकिन मादुरो के लिए जनमतसंग्रह को टालना और ज्यादा मुश्किल होगा। हेनरिक कैप्राइल्स के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने यूरोपीय संघ से अपील की है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने की प्रक्रिया में उसके साथ सख्त रवैया अपनाया जाए। फ्रांसवा ओला ने कहा कि ब्रिटेन ने अलग होने का फैसला किया था, लेकिन वो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन चाहता है कि ब्रिटानी कंपनियों को यूरोपीय संघ से व्यापार के लिए पूरी आज़ादी मिले, लेकिन वो कंपनियों और उसके कर्मचारियों को यूरोपीय संघ की अदालत के न्यायिक सीमा में नहीं रखना चाहता है। हालांकि यूरोपीय संघ ने इसे असंभव बताया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पुलिस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक पोस्टर हटा दिया है, जिसे लेकर विवाद हो रहा था। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो BBCHindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कैरिबियाई देश हेती में एक दशक के सबसे शक्तिशाली तूफान मैथ्यू ने भारी नुकसान पहुंचाया है, और अभी अभी खबर आ रही है कि हेती की सरकार ने इस ये जानकारी दी है कि कम से कम 300 लोगों की इसमें मौत हो गई है। वहीं कई शहरों में भारी तबाही हुई है और करीब 2 दिन बाद कई शहरों से संपर्क हो पाया है, जिससे कई शहरों में कई मकानों के ध्वस्त होने की जानकारी मिल रही है। हेती के अलावा क्यूबा और फिर बहामास में भी तूफान मैथ्यू ने अपना असर दिखाया है, लेकिन अब ये तूफान और ताकतवर बनकर अमरीका में दस्तक देने वाला है। पूरी जानकारी के साथ हरिता कांडपाल।
कैरेबियाई देश हेती में आए शक्तिशाली तूफान मैथ्यू के कारण 108 लोगों की मौत हो गई है। हेती के आंतरिक मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि दक्षिणी शहर रोश ए बातू में ही 50 लोगों की मौत हो गई है। कैरेबियाई देशों में पिछले एक दशक में आए तूफानों में मैथ्यू सबसे शक्तिशाली है। हेती और क्यूबा में अपना असर दिखाकर ये बहामास द्वीप में दस्तक दे चुका है। हेती में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है, जहां दक्षिण में एक शहर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। हवाई सर्वेक्षण के दौरान ली गई तस्वीरों में जेरेमी शहर में कई सौ मकान ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लेस्कायस शहर में भी इसका बुरी तरह असर हुआ है। यहाँ के रहने वाले लोगों ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। जूलियो डिजायर ने कहा, हमारे पास पैसा और सारा सामान खत्म हो गया है, हमें पता नहीं कहाँ जाएं, सब कुछ तबाह हो गया, हमने मदद मांगी है। वहीं एक महिला ने कहा, जो भी थोड़े बहुत पैसे हमारे पास थे अब वो भी नहीं है, हम भूखे हैं। लेस्कायस शहर के लोगों के शब्द। देश के दक्षिण पश्चिम इलाकों से संपर्क टूट चुका था और अब दो दिन के बाद कल दूर दराज के इलाकों तक अधिकारी पहुँच सके, वहाँ राहत कार्य की भी जरूरत महसूस की जा रही है। अमरीकी संस्था रेडक्रॉस की प्रवक्ता सूजी डी फ्रांसिस ने कहा कि पहली प्राथमिकता हेती में फोन नेटवर्क को बहाल करना है। हेती और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद अब तूफान मैथ्यू और शक्तिशाली हो गया है। अमरीका में इस तूफान की दहशत बनी हुई है। अगले 12 घंटों में फ्लोरिडा के दक्षिणी इलाकों में मैथ्यू के करीब 205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराने की आशंका अधिकारियों ने जताई है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा है कि तूफान विनाशकारी साबित हो सकता है। फ्लोरिडा राज्य में 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। फ्लोरिडा के अलावा अन्य चार राज्यों में भी आपातकाल घोषित किया गया है। जॉर्जिया के गवर्नर नेथन डील ने कहा कि पूरे तटीय इलाके को खाली कराया जा रहा है।
Our state, along with some of our sister states in the southeast,
दक्षिण पूर्व में चार राज्यों में खराब मौसम का खतरा बना हुआ है। हमने 6 काउंटी में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अनिवार्य आदेश दिया है। नेथन डील के शब्द। अमेरिका में आने वाले तूफानों में मैथ्यू पिछले 12 सालों का सबसे ताकतवर तूफान बताया जा रहा है।
हेती की सरकार ने अभी अभी जानकारी दी कि तूफान मैथ्यू में करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। ये थी हरिता कांडपाल। कश्मीर के मुद्दे पर ध्यान दिलाने के लिए अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के दो विशेष दूतों का कहना है कि अमेरिका अब विश्व शक्ति नहीं रहा और अगर कश्मीर और भारत को लेकर उनके विचारों पर विचार नहीं किया गया तो पाकिस्तान चीन और रूस का रुख करेगा। मैंने इस बारे में और बातचीत के लिए वाशिंगटन फोन कर BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से पूछा कि इन विशेष दूतों ने कश्मीर पर क्या बातें कही हैं।
मुशाहिद हुसैन सैयद और शाजरा मंसब, ये दोनों प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत बनकर आए हैं अमेरिका में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए। और खास तौर से इनका फोकस है, उन्हीं के शब्दों में, अमेरिका को बताना कि कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और अमेरिका को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। उसी के तहत इन दोनों ने विदेश विभाग में मुलाकातें की है, कांग्रेस में सेनेटर्स से मिल रहे हैं और अमरीकी थिंक टैंक्स में भाषण दे रहे हैं। और अटलांटिक काउंसिल में कल उन्होंने भाषण और सवाल जवाब खत्म होने के बाद जो लोगों से बात हो रही होती है, वहां एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका अब एक वर्ल्ड पावर नहीं रह गया है, अब वो कमजोर हो रहा है और पाकिस्तान रूस और चीन की तरफ झुकेगा अगर कश्मीर पर उनकी नहीं सुनी गई। और उन्होंने कहा कि रूस पहली बार पाकिस्तान को हथियार बेचने को राजी हो गया है, चीन उसका काफी करीबी दोस्त है और अमेरिका को इस बदलते क्षेत्रीय समीकरण को देखना होगा। उनका ये भी कहना था कि ओबामा प्रशासन को ये समझना चाहिए कि बिना पाकिस्तान की मदद के अफगानिस्तान में शांति नहीं हो सकती। और आज उन्होंने एक और बयान दिया है एक दूसरे थिंक टैंक स्टिम्सन इंस्टीट्यूट में कि कश्मीर का मसला सुलझाए बिना अफगानिस्तान में शांति नहीं हो सकती है। तो एक कूटनीतिक अभियान पर ये दोनों यहाँ आए हैं और उसी के तहत ये बातें हो रही हैं।
जी, कूटनीतिक अभियान के तहत ये दोनों दूत आए हैं और जिस तरह की बयानबाजी ये दोनों दूत कर रहे हैं उस पर अमेरिका में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं?
देखिए, जिन लोगों से मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि इसमें एक विरोधाभास है उनके बयानों में। अगर अमेरिका को वो एक डिक्लाइनिंग पावर मानते हैं, कमजोर होती ताकत मानते हैं, तो फिर आप अमेरिका में कश्मीर का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आप अमेरिका से क्यों मध्यस्थता चाहते हैं? अभी अभी पाकिस्तान को अमेरिका से फौजी मदद मिल रही है, तो इसे एक कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश विभाग में भी जो उनकी बातें हुई हैं, वहां पर अधिकारियों ने उनकी बातें सुनी है, लेकिन पैगाम ये दिया है कि सीमा पर तनाव को कम करें, भारत पाकिस्तान सीमा पर। यही पैगाम जॉन केरी ने भी दिया था जब वो नवाज शरीफ से न्यूयॉर्क में मिले थे। तो कश्मीर पर अमेरिका मध्यस्थता करे, उसमें वो कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और वो इसे द्विपक्षीय मामले की तरह देख रहे हैं। लेकिन हाँ, जो पाकिस्तान ने अपने घरेलू ऑडियंस और भारतीय कश्मीर के जो अलगाववादी हैं, उनको ये पैगाम जरूर दिया है इससे कि पाकिस्तान उनका पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है और उठाता रहेगा, और वो एक तरह से उनके पूरी तरह से साथ है।
भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कम हो तनाव, ये कहना है अमेरिका का। ये थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय।
बीबीसी इंडिया बोल।
पिछले दिनों भारत पाकिस्तान तनाव के चलते भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध। मुल्कों की दुश्मनी में क्या कलाकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए? क्या कला को भी राजनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए? इस शनिवार 8 अक्टूबर बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1802-7001 पर शाम 7:30 बजे।
बीबीसी इंडिया बोल।
कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने से चल रही अपनी किसान यात्रा का कल दिल्ली में समापन किया। शुरुआत उन्होंने मेरठ से की और फिर गाजियाबाद होते हुए दिल्ली में समाप्त की। दिल्ली में उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा और उन्हें सैनिकों के खून की दलाली करने वाला तक कह दिया। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
यूं तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा पर निकले थे, और जिसका मकसद था किसानों से वार्ता करना, उन्हें सरकार बनने पर लाभ देने का वादा करना। लेकिन करीब 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान वो रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, मजार, गुरुद्वारों जैसे तमाम धार्मिक स्थलों पर भी माथा टेकते गए। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनकी या चुनाव में शामिल सभी पार्टियों की मुख्य लड़ाई सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी से है, लेकिन राहुल गांधी के निशाने पर मुख्य रूप से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। आखिरी दिन तो उनका प्रहार कुछ ज्यादा ही धारदार हो गया।
जो हमारे जवान हैं जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए, आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए, आप हिंदुस्तान की सेना को 7th Pay Commission में पैसा बढ़ा के दीजिए।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सवाल का भी बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया, जिसमें कांग्रेस से 70 साल में किए गए कामों का हिसाब मांगा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया है।
70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। हमने लोगों को इंसाफ दिया, और जो इंसाफ का तराजू होता है उसकी हमने इज्जत की। नरेंद्र मोदी जी, जब आप 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को देते हो और हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या करता है, हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा बिना काम जाता है, तो आप इंसाफ की तराजू की इज्जत नहीं कर रहे हो। आपने इंसाफ के तराजू को उठा के फेंक दिया है। आपने हिंदुस्तान को, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम किया है, हिंदुस्तान को बांटने का काम किया है।
ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने सिर्फ दिल्ली पहुंचकर ही प्रधानमंत्री पर हमला बोला हो, बल्कि यात्रा के दौरान अक्सर उनके निशाने पर प्रधानमंत्री ही रहे। इस बारे में जब मैंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से घोषित मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित से सवाल पूछा तो उनका कहना था,
राहुल गांधी जी जो बातें कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कह रहे हैं। उनकी वो पदयात्रा जो है वो खाट पद यात्रा है, यानी किसानों के लिए है, और उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स करे हैं कि हम सत्ता में आए तो ये हम 3 वायदे पूरे करेंगे, तो वो बात तो सारी उत्तर प्रदेश के लिए है ना। अब वो नेशनल लीडर है तो नेचुरली नेशनल बात भी करेंगे।
लेकिन जानकारों का कहना है कि इसके पीछे कुछ और ही वजह है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा भले ही यूपी के विधानसभा चुनाव के मौके पर हो रही हो, लेकिन उनकी और कांग्रेस पार्टी की निगाहें 2019 के लोकसभा चुनाव पर हैं।
राहुल गांधी की यात्रा हमें घोषित था कि 2017 विधानसभा चुनाव के लिए हो, लेकिन पूर्ण रूप से 2019 की तैयारी है राहुल गांधी की और कांग्रेस की।
बहरहाल राहुल गांधी एक महीने की यात्रा पूरी करके अब शायद कुछ दिन आराम करने की सोच रहे हों, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने जो जबानी तीर छोड़ दिया है उससे उन्हें और दूसरे नेताओं को आराम का मौका शायद ही मिले। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
अपनी किसान यात्रा के अंतिम दिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, लेकिन क्या आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने यह बयान दिया है? हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से बात की।
राजनीतिक हित को देखते हुए या राजनीतिक बयान को देखते हुए राहुल गांधी ने अपनी पार्टी मतलब कम से कम वो ये तय करके आए हैं कि बीजेपी जो इसको एनकैश कराने की कोशिश कर रही है, जो पूरा ऐसा उनकी धारणा इसलिए बनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह पर पोस्टर लगे हैं जिसमें बीजेपी ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अपने का श्रेय लेने की कोशिश की है। और मोदी का नाम तो मुझे लगता है इसलिए लिया क्योंकि मोदी इसके नेता है, क्योंकि अंधता मोदी ने चूंकि हाल में ऐसा कोई बयान दिया नहीं है, पर नेता होने के नाते इसका श्रेय या इसका जो कुछ भी आलोचना का पात्र होने ही बनना है। हाँ, भाषा को या शब्दों को लेकर के कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को हिंदी के मुहावरों का इस्तेमाल ठीक से करने की आदत नहीं है मुझे लगता है, और इसके पहले भी वो कई बार इस तरह का गच्चा खा चुके हैं। पर ये जरूर है कि पार्टी कांग्रेस पार्टी ने शायद ये निश्चय किया है, कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों ने भी, कि वो इसके राजनीतिक निहितार्थ को पूरी तरीके से अपने हित में करना चाहेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इसका फायदा कोई कांग्रेस को खास होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और खासतौर से पंजाब में भी ये सब लड़ाई वगैरह का असर काफी होता है, झगड़ों का या पाकिस्तान के साथ विवाद को लेकर के जो वोटर का दिमाग है जल्दी घूमता है।
इससे पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट्स, जैसे कि एक बार मौत का सौदागर कहना गुजरात में और खूनी पंजा जैसे बयान भी कांग्रेस की तरफ से आते रहे, तो इस तरीके के बयानों का क्योंकि स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचा है पहले भी, तो क्या इसे नहीं समझ रहे राहुल गांधी?
हाँ, मेरे समझ से मैं कह रहा हूँ कि इसकी भाषा का या शब्दावली का या मुहावरे का उन्होंने इसका पूरा अनुमान नहीं लगाया है, तो इसका राजनीतिक लाभ जो वो लेना चाहते हैं वो उनको नहीं मिलेगा। केवल इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी पार्टी की मंशा जरूर व्यक्त की है कि वो इस सर्जिकल स्ट्राइक का लाभ बीजेपी को लेने देना नहीं चाहते। पर कांग्रेस पार्टी को अगर सावधानी बरतती, जैसे सोनिया गांधी का वक्तव्य समर्थन में आया, उसके बाद भी कई वक्तव्य कांग्रेस ने ऐसे दिए जो संतुलित थे, पर इधर संजय निरुपम का बयान और उसके बाद चिदंबरम ने जो बात कही वो थोड़ी सी दूसरे तरीके की थी कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किए थे उसका जिक्र होना चाहिए, तो वहां पर तो संतुलन बैठाने की कोशिश की थी। पर राहुल गांधी के बयान से आज शब्दावली या कम से कम तरीके को लेकर के आपत्ति की जा सकती है।
लेकिन अगर यहाँ पर एक रोचक बात देखी जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी अपनी शब्दावली को लेकर लगातार प्रश्नों में घिरे रहे हैं, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में राहुल गांधी के इस बयान को उस तरह से लोगों के बीच प्रचारित कर पाएगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा तबका काफी समय से ये हेट स्पीच के चुनाव के दौरान से ही और दूसरे चीन को लेकर के या पाकिस्तान को लेकर के या मुसलमानों को लेकर के ऐसे जहरीले वक्तव्य देता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी या सरकार होने के नाते उन्होंने कोशिश की है कि एक संतुलित स्थिति बनाए रखने की। वो उनके लिए उनके हित में नहीं होगा कि वो उन बयानों को समर्थन दे, लेकिन उन्होंने उन बयानों को से अपने को डिस्टेंस जरूर की लीडरशिप ने, पर उनकी निंदा नहीं की या उनको अलग करने का या उनको डांट नहीं लगाई किसी को ऐसे, या कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की।
वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से बात कर रहे थे रोहित जोशी। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। हरिता कांडपाल स्टूडियो आ चुकी हैं। हरिता, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, आज के अखबार में बहुत भारत और पाकिस्तान की तरफ से आए बयानों और दोनों के बीच चल रही तकरार की खबरों मुख्य रूप से छाई हैं। उसके अलावा एक दादरी में जो बीफ के मामले में हत्या हुई थी उसकी बात करते हैं। पहले हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा है कि दादरी में बीफ खाने के शक में पीट पीट कर मारे गए अखलाक की हत्या के संदिग्ध के शव को कल तिरंगे में लपेट कर उनके गांव ले जाया गया। और 22 वर्षीय रवीन इनका नाम था और ये हिरासत में इनकी मौत हो गई थी। और इनके शव को बिसाड़ा गांव जब ले जाया गया तो इन्हें शहीद बताया गाँव वालों ने। और वहाँ पर जो नेता थे उन्होंने कहा कि उनकी शहादत को बेकार नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन गाँव वालों की मांग है कि इसे 1 करोड़ किया जाए और उन्होंने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। तो अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अब लौटते हैं पाकिस्तान की तरफ। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने के डर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पहली बार पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित चरमपंथियों को पनाह ना दे सेना। और ये खबर जो है ये पाकिस्तान के अखबार डॉन के हवाले से दी गई है। लिखा गया है कि नवाज शरीफ ने कहा कि पठानकोट और 2008 के मुंबई हमलों की जाँच जल्दी पूरी कर दी जाए, नहीं तो पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ता जा रहा है। और इसके अलावा जब बात करते हैं भारत की ओर आते हैं तो भारत इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि एनसीपी नेता शरद पवार ने कल कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना जो है बेतुका और गैर जिम्मेदाराना है। इसके अलावा ये भी खबर थी कि उन्होंने दावा किया था कि हमारे समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, तो ये है। इसके अलावा एक खबर इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामलीला में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। वो जो है मुजफ्फरनगर में जहाँ के वो हैं मूल तौर पर, वहाँ पर वो हिस्सा लेने के लिए गए थे लेकिन शिवसेना ने नहीं लेने दिया। इसके बाद जनसत्ता और अन्य अखबारों ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा और बीसीसीआई पर आज काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है।
जी, बीसीसीआई पर महत्वपूर्ण फैसला आने वाला ये कहना है जनसत्ता अखबार का। बहुत बहुत धन्यवाद हरिता कांडपाल समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। और जैसे कि हरिता कांडपाल भी बता रही थी, बीसीसीआई के लिए करो या मरो की स्थिति है। अदालत में चली लंबी बहसों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा था कि वो लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करे। इन सिफारिशों में ये भी शामिल था कि बीसीसीआई अधिकारियों के पद संभालने की अधिकतम सीमा निर्धारित हो। सिफारिशों में एक व्यक्ति एक पोस्ट हर राज्य को बराबर वोट देने की बात कही गई थी, लेकिन बीसीसीआई ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया है। विनीत खरे ने इस बारे में वरिष्ठ खेल पत्रकार आज मेनन से बात की।
टोटली अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी कभी स्थिति आई नहीं। बहुत से क्राइसिस आए हैं बीसीसीआई के हिस्ट्री में, अगर आप देखें बहुत समय ऐसा था, ऐसा लगा कि बहुत एक गंभीर समस्या आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई उसको टैकल कर सकी थी। उसकी एक वजह और सबसे बड़ी वजह ये थी कि बीसीसीआई ने हमेशा ये मेंटेन किया है, जहां तक लीगल प्रोविजन है, कि वो एक सोसाइटी है और सोसाइटी में वो आपस में अंदरूनी मसले में जिस तरह से वो अपना टैकल करती है उसमें किसी अमल नहीं देना चाहिए। और अब तक के यानी कि 1.5 साल पहले जब तक ये मुजगल कमेटी और लोधा कमेटी नहीं आई, तब तक यही पोजीशन कोर्ट्स ने भी लिया था, तो इंटरनली जो है वो उनका सेटलमेंट हो जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि मामला गया है जुडिशरी के सामने और जुडिशरी ने कहा है कि आप सोसाइटी हो भले ही, लेकिन ये मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बन गया है, ये मैटर ऑफ इंडियन क्रिकेट बन गया है, ये केवल बीसीसीआई का मामला नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा रेडिकल बदलाव आया है जिस तरह से इंडियन क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट को देखा, अब देखा जा रहा है और आगे देखा जाएगा।
बीसीसीआई की तरफ से इमेज पेश करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ हुआ यहाँ पर तो जो भारत का एक सो कॉल्ड डोमिनेंस है गेम ऑफ क्रिकेट पर वो खतरे में पड़ सकता है, क्रिकेट अस्थिर हो जाएगा, माहौल अस्थिर हो जाएगा, ये आप इसे कैसे देखते हैं?
कुछ ऐसे रिफॉर्म प्रपोजल्स हैं जो काफी तकलीफ दे है, जैसे वन स्टेट वन वोट वन स्टेट एसोसिएशन। ये अगर आप थियोरेटिक देखें तो अच्छी बात है कि सब स्टेट भारत में जितने प्रदेश है सबको एक एक क्रिकेट एसोसिएशन मिलेगा, स्टेट एसोसिएशन और एक एक वोट, तो थियोरेटिकली तो ये बहुत सही है, लेकिन एक लेगेसी और कंटिन्यूटी के लिए आप उसे इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन या सबसे बड़ा एसोसिएशन जो है इंडिया में हुआ है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से भी अगर आप देखें तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त रहा है। कल कहीं और एक प्रदेश खड़ा हो जाए या उनको आप स्टेट एसोसिएशन दे दें क्रिकेट एसोसिएशन, तो उसका कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है या तो कर्नाटका के साथ या मुंबई के साथ या दिल्ली के साथ शायद, क्योंकि ये एक मसला बीसीसीआई ने खड़ा किया है कि हम कैसे कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं जैसे 17 साल का एज कैप है वो मेरे ख्याल से मानना चाहिए, अब तक क्यों नहीं मानी है बीसीसीआई ने मुझे नहीं समझ में, जहां तक पॉलिटिशियंस का है या ब्यूरोक्रेट्स जो पोजीशन ले लेते हैं और उन्हें नहीं लेना चाहिए, इस पे भी काफी विवाद हुआ है क्योंकि इंडियन क्रिकेट में हर पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं कोई जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, और क्योंकि उनका नेक्सस उनका उनकी बहुत गहराई में उनका कनेक्शन है तो उनको निकालना इतना आसान नहीं है, और ये मेरे ख्याल से एक हलक में अटकी हुई बात है।
BCCI کو ود ان کوٹ صاف کرنے میں کلین کرنے میں آپ کو لگتا ہے لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں اور یہ کیا سمبھو ہے؟
ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا, کرنا چاہیے تھا شاید انٹرنلی, شاید بی سی سی آئی کو خود کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں یہ معاملہ جوڈیشری تک جاتا ہی نہیں. اگر 2013 میں جب IPL کا کانڈ ہوا یا اسکیم کنٹروورسی سامنے آئی, اگر انڈیپینڈنٹ انکوائری خود بٹھا دیتے اور جو میٹر ہے اسے سلجھا دیتے اس وقت, اور اگر یو نو جس طرح سے کوئی اگر غلطی کیا ہے اسے خود پنش کر دیتے تو میٹر جوڈیشری تک جاتا ہی نہیں. لیکن اس وقت بی سی سی آئی نے یہ پوزیشن لیا کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے, ہمارا آدمی کوئی انوالو ہی نہیں ہو سکتا ہے, یا اگر انوالو بھی ہے ان کی غلطی نہیں ہے, کسی اور کا فالٹ ہے. تو معاملہ ایک کے بعد ایک جو کانٹروورسیز آتی گئی اور پہنچ گیا سپریم کورٹ تک, اور سپریم کورٹ نے بھی کافی ڈیلے کیا ایک ڈیڑھ سال تک. اور مجھے لگتا ہے پچھلے ایک سال میں یا جب سے لوہرا کمیٹی کا ریفارم پروپوزل آیا تب سے ہی کوئی ایک کنسسٹنسی نہیں رہی ہے بی سی سی آئی کی ریپلائی میں.
کھیل پترکار ایاز میمن سے بات کر رہے تھے ونیت کھرے. وشو بینک کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غریبی ریکھا سے نیچے جیون جینے والے لوگوں کی سنکھیا میں بھارت کا ستھان پہلے نمبر پر ہے. یہاں ہر تین میں سے ایک ویکتی ویشوک مانکوں کے انوسار غریبی ریکھا کے نیچے رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں ہو رہا وکاس دکشن ایشیا میں غریبوں کی تعداد کو کم کرنے میں کافی مدد پہنچا رہا ہے. ہمارے سہیوگی روہت جوشی نے اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی کے سمپادک پرنجے گوہا ٹھاکردا سے وشو بینک کی اس رپورٹ پر بات کی.
وشو بینک کا رپورٹ جو کہا ہے اس میں آشچرج ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے. کچھ سالوں سے کچھ دشک سے ہم لوگ کو یہ معلوم تھا, یہ وشو میں ہر تین کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر میں ایک ویکتی بھارت ورش سے ہے, مگر یہ وشو میں پورا وشو میں ہر تین ویکتی جو غریب ہے, جو ان پڑھ ہے, جو کپوشت ہے اور جو غریبی ریکھا کے نیچے رہتے ہیں وہ بھی بھارت ورش میں رہتے ہیں. نوبل لوریٹ جانے مانے ارتھشاستری امرتیا سین نے بہت بار کہا کہ بھارت ورش کا 10% لوگ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں اور نیچے کا ایک دم جو غریب لوگ جو 10% لوگ رہتے ہیں وہ سب سہارا افریقہ میں لوگ جیسے رہتے ہیں, اس سے بھی ان کی حالت خراب ہے. جس رفتار سے آج بھارت ورش کا سکل گھریلو اتپاد بڑھ رہے ہیں یعنی کہ جی ڈی پی بڑھ رہے ہیں, یہ دکشن ایشیا یا پورا وشو میں دیشوں میں سب سے زیادہ تیزی سے بھارت ورش کا جی ڈی پی یا سکل گھریلو اتپاد بڑھ رہے ہیں. مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ روزگار بڑھ رہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ امیر اور غریب کے بیچ جو دورائی ہے یہ کم ہو رہے ہیں. اسی لیے ہمارے ارتھ ویوستھا میں جس طرح سے یہ گروتھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ سب سے غریب جو لوگ ہیں اس کے ان لوگ کے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں.
لیکن اس رپورٹ کے مطابق خاص کر جو چین اور بھارت ہیں یہ جو دو بڑے بازار بھی ہیں اور جو دو بڑی ارتھ ویوستھائیں ہیں ان میں جس طرح کا اکنامک گروتھ پچھلے دور میں دیکھا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق اس گروتھ کی وجہ سے غریبی کی آل اوور جو ساؤتھ ایشیا میں جو تعداد ہے وہ گھٹی ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کے کیا مطلب ہے؟
آپ نے بالکل ٹھیک کہا, دکشن ایشیا وشو میں ایک جگہ ہے, ایک علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اکنامک گروتھ ہو رہا ہے اور اس دکشن ایشیا میں بھارت ورش سے سب سے زیادہ گروتھ ہو رہا ہے, مگر اس کے گروتھ کا سب سے غریب جو لوگ ہیں, غریبی ریکھا کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یہی بہت بڑا ایک پرشن چنہ ہے. اور غریبی ریکھا میں کے نیچے جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا حالت ٹھیک ہے, تھوڑا بہت اچھا ہوا یہ تو ماننا ہی پڑے گا, مگر جو امیر لوگ ہیں جس کے جو ہمارے دیش کے جو بڑے بڑے پونجی پتی ہے, جو ادیوگ پتی ہے, ان کا جو دولت, ان کا جو آئے وہ اس سے بھی زیادہ رفتار سے بڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہے جو دورائی ہے, رچ اینڈ پور ڈیوائڈ ہے, جو امیر اور غریب کے بیچ جو اسنتولن ہے یہ بڑھ رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے دیش کے سماج کے لیے اچھا نہیں ہے. جیسے دکشن امریکہ ہے, لیٹن امریکہ کے بہت سارے دیشوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انیکوالٹی ہے, امیر اور غریب کے بیچ جو دورائی ہے وہ کم ہو رہے, کم ہو گیا, مگر چین میں بڑھ گیا, بھارت ورش میں بڑھ گیا, دکشن افریقہ میں بڑھ گیا, امریکہ میں بڑھ گیا, یوروپ میں بڑھ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کا جو نیتی ہے, جو ارتھ نیتی ہے سرکار کو تو بہت کچھ کرے. ہر سرکار کہتے ہیں کہ ہم غریب کے لیے کچھ کام کر رہے, نریندر مودی جی کا سرکار کہہ رہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں, مگر ابھی تک یہ سرکار کو تو 2.5 سال ہو گیا مگر ابھی اچھے دن آنے والے ہیں, ابھی تک آیا نہیں.
اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی کے سمپادک پرنجے گوہا ٹھاکردا سے بات کر رہے تھے روہت
जोशी। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार। बीबीसी समाचार। हेती में शक्तिशाली तूफान मैथ्यू के कारण करीब 300 लोगों की मौत हुई है। अब इस तूफान के अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पहुंचने की आशंका के चलते लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पाकिस्तान की संसद ने ऑनर किलिंग से जुड़े एक कड़े कानून को पास किया है। अब ऑनर किलिंग में शामिल लोगों को अनिवार्य रूप से आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। बीबीसी समाचार। मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।